आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो पिछले दो दिनों से भगवान जगन्नाथ के भक्तों की चर्चा चल रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भक्त हुए हैं श्री जगन्नाथ जी के, उनके जीवनी और भक्ति का संक्षिप्त रूप में वर्णन हम कर चुके हैं। कल गजपति राजा रामचंद्र देव का वर्णन हुआ, जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनवाया गया, फिर भी जगन्नाथ की भक्ति उन्होंने छोड़ी नहीं। और इनके पहले, कई वर्ष पहले, एक और भक्त थे जिनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ और पाले पोसे गए भी मुसलमान जैसे। उनका नाम है सालबेग। उड़ीसा में ये भक्त कवि सालबेग से नाम से जाने जाते हैं। उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं जयदेव गोस्वामी, जिनकी चर्चा भी हम थोड़े दिन पहले कर रहे थे। जयदेव गोस्वामी के बाद भक्त कवि सालबेग सबसे प्रसिद्ध भक्त कवि हैं उड़ीसा में। इतने प्रसिद्ध हैं वो कि उड़ीसा में किसी भी गांव में यदि आप जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, बच्चे बच्चे से भी पूछेंगे तो अवश्य उन्होंने भक्त कवि सालबेग का नाम सुना होगा। जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम है, वैसे उड़ीसा में भक्त कवि सालबेग है। और थोड़े इतिहास की चर्चा और करते हैं संक्षेप में। कल जैसे बता रहे थे कि मुसलमानों के आक्रमण से जगन्नाथ जी के इतिहास का काफी गहरा संबंध है, वैसे भारत में मुसलमानों ने जो पहली बार आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी आदि, वो केवल उत्तर भाग में ही रहे, इधर पूर्व भाग में नहीं आए, दक्षिण भाग में नहीं आए। पहली बार जब मुसलमानों ने आक्रमण किया उड़ीसा में, ये फिरोज बिन तुगलक के द्वारा था सन 1360 में। परंतु वहां वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऐसे उस समय के बाद लगातार युद्ध उड़िया राजाओं के बीच में और मुसलमानों के बीच में होते रहे समय समय पर। और जगन्नाथ मंदिर के ऊपर भी आक्रमण करने का काफी प्रयास उनका रहा था, लेकिन ऐसे प्रयास चलता गया। वैसे फिरोज बिन तुगलक, इन्होंने जब आक्रमण किया था तो उसके बाद भी कई ऐसे लोग आए, उन्होंने आक्रमण किए, फिर भी जगन्नाथ भगवान की सेवा जगन्नाथ मंदिर में बंद हुई नहीं। उड़ीसा के लोगों ने जगन्नाथ भगवान को मानना बंद नहीं किया और 250 वर्षों तक ये चलता जब गया तो दिल्ली में तब तक अब मुगल राज शुरू हो गया था। राजा अकबर ये थोड़े उदार हृदय के थे, जैसे कल कह रहे थे हम, लेकिन उनके पुत्र जहांगीर या सलीम ऐसे उदार विचारों के नहीं थे, और उनके साथ में भी ऐसे कोई लोग थे, मुल्ला आदि, जो उनको भड़का रहे थे और बता रहे थे कि ये जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है ये तो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है और हिंदू समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यदि इस मंदिर को तोड़ा जाए तो फिर हिंदू समाज का जो आधार है वो नष्ट हो जाएगा, तो अवश्य जगन्नाथ के ऊपर, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। 200 वर्ष हो गए, अधिक वर्ष हो गए, परंतु यहां तक ये लोग जगन्नाथ की सेवा जारी रख रहे हैं। तो फिर जहांगीर ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली और ये ठीक समझा कि किसी को वहां भेजना चाहिए। तो उनके मुगल सेना के एक सेनापति थे जो उनके निकट के मित्र भी थे, जिनका नाम था जहांगीर कुली खान, वो लाल बेग के नाम से जाने जाते थे। तो वो काफी प्रसिद्ध थे इसलिए कि वो हिंदुओं से बहुत घृणा करते थे, बहुत अधिक। तो जहांगीर ने देखा कि ऐसे व्यक्ति सही है मेरे काम के लिए, जो मेरा मित्र भी है और साथ साथ हिंदुओं को भी काफी, हिंदुओं के प्रति घृणा भावना है। तो उन्होंने लाल बेग को बंगाल और उड़ीसा प्रांतों के सूबेदार के पद में नियुक्त कर दिया। तो फिर लाल बेग वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन्होंने बाराबती किले से, जो कि कटक में है, कटक के पास में है, वहां से पुरी की ओर प्रस्थान किया अपनी सेना को साथ में लेकर, और वैसे आगे बढ़े। उनका पूरा पूरा इरादा था, उनकी इच्छा थी कि जगन्नाथ मंदिर को तोड़ना है और इस सारी सेवा को नष्ट करना है। तो ऐसी भावना से ये निकल पड़े। जाते जाते एक स्थान पर पहुंचे, एक गांव था वहां, और वहां पे एक गोपीनाथ मंदिर था। तो गोपीनाथ मंदिर में कई ब्राह्मण आदि सेवा किया करते थे, और वहां पास में एक छोटा सा कुंड था। आज भी वो कुंड है, वो मंदिर भी है, परंतु वो मंदिर टूट गया है। इसके बाद जो घटनाएं हुई, वहां एक व्यक्ति थे जिनका संक्षेप में वर्णन हम कल कर रहे थे, काला चांद या काला पहाड़, उसी व्यक्ति ने इस गोपीनाथ मंदिर को भी तोड़ दिया था। और अभी गोपीनाथ मंदिर के बस थोड़े ही कमरे बचे हैं, एक दो कमरे बचे हैं बस। परंतु उसी स्थान में पहले बहुत भक्ति भाव से अनेक लोग गोपीनाथ जी की सेवा किया करते थे, बहुत अच्छा मंदिर हुआ करता था वहां पे। और पास में जो एक कुंड था वो अब भी है, पद्म पुकुर कहते हैं, उड़िया बंगला भाषा में पुकुर मतलब कुंड या सरोवर। तो उस पद्म पुकुर में अनेक पद्म पुष्प भी थे। तो वहां से ये लाल बेग गुजर रहे थे अपनी सेना को लेकर। तो जैसे वहां गए, जा रहे थे, वहां रुके, तो उन्होंने देखा कि वहां एक ब्राह्मणी जो बहुत तरुण थी, तरुणी ब्राह्मणी, बहुत सुंदर थी दिखने में, वो वहां स्नान कर रही थी। तो लाल बेग ने सोचा कि ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो बलपूर्वक अपहरण कर लिया उस ब्राह्मणी का। वो ब्राह्मणी, उस ब्राह्मणी का नाम था ललिता। बहुत ही अच्छी भक्त थी भगवान गोपीनाथ जी की। उनके पिता, इनका नाम था माधव रथ, माता का नाम था सुलक्षणा। और बचपन में ही, जैसे कि उस समय प्रथा हुआ करती थी, लड़कियों की का विवाह जो है जल्दी ही किया करते थे। और बचपन में उसका विवाह हो चुका था एक बहुत अच्छे ब्राह्मण से, जिनका नाम था बंधु मिश्र। तो बंधु मिश्र और ललिता देवी के जो पिता थे, वो दोनों ऊंचे उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल के थे, बहुत ही अच्छे भक्त थे। लेकिन दैव से बंधु मिश्र का देहांत कम आयु में ही हो गया। तो फिर ललिता देवी वो विधवा हो गई। तो विधवा हो गई तो अपने पिता के यहां फिर से रहने आ गई और वहां सेवा किया करती थी गोपीनाथ मंदिर में। तो वहां जब वो पद्म पुकुर में स्नान कर रही थी तो लाल बेग ने उनको देख लिया और अपहरण करके ले गए वापस अपने किले में, वापस बाराबती जो किला है वहां पे ले गए। वैसे वो निकल पड़े थे जगन्नाथपुरी की ओर, लेकिन जब ललिता इस महिला को देखा, इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद में अब जगन्नाथपुरी जाऊंगा, अब नहीं, तो फिर से अपने महल में वो लौट के आए अपने किले में। वहां पे ललिता देवी ने बहुत विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन वो अकेली महिला क्या करती। तो फिर अंत में जब भी वो भागने का प्रयास करती तो फिर से उसको पकड़ के ले आते। अंत में थक के और हार के ललिता देवी ने लाल बेग की पत्नी होने के लिए स्वीकार कर दिया, लेकिन एक शर्त रखा। शर्त ये था कि आप आगे से अभी जगन्नाथ मंदिर में आक्रमण नहीं करोगे, नहीं किसी ब्राह्मणों के ऊपर कभी प्रहार करोगे। तो ये कितना बड़ा त्याग था। और वैसे भी कोई चारा नहीं था ललिता देवी के पास, क्योंकि लाल बेग तो कितने शक्तिशाली व्यक्ति थे, इतनी बड़ी सेना थी, वो अकेली महिला क्या करती। तो इस शर्त को स्वीकार किया लाल बेग ने और फिर ललिता देवी से विवाह कर दिया। और वो जब मुसलमान बने तो उसका नाम रख दिया फतिमा बीवी। और थोड़े समय बाद फिर उनका एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा लाल बेग ने साल बेग, अपने पीछे ही साल बेग नाम रख दिया। और ये साल बेग भी मुसलमान धर्म के अनुसार ही बड़े होते गए। उनको पाला पोसा गया उसी तरह से अच्छे मुसलमान बनने के लिए। साथ साथ लाल बेग एक योद्धा थे, क्षत्रिय थे, तो वैसे ही उसी भावना से इस लड़के को भी बड़ा किया गया। लेकिन ज्यादा समय लाल बेग का पारिवारिक जीवन चला नहीं, क्योंकि दिल्ली में किसी मुल्ला की कोई शिकायत थी लाल बेग के प्रति। तो उन्होंने बादशाह जहांगीर से शिकायत की और फिर बादशाह जहांगीर ने वापस बुलवाया लाल बेग को कि आप उड़ीसा छोड़ के वापस दिल्ली चले आओ। तो इसके बाद जो हुआ, जो इतिहास के ग्रंथों में अलग अलग थोड़े वर्णन हैं, एक वर्णन ऐसे है कि लाल बेग वहां से निकल पड़े, दिल्ली की ओर जा रहे थे कि किसी एक आतताई ने उनके ऊपर प्रहार किया और उनको मार डाला, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा वर्णन ऐसे है कि बंगाल में अफगान एक राजा थे, अफगानिस्तान से आए थे, और वो मुगल राजा के अधीन नहीं हो रहे थे, वो स्वतंत्र थे। इसलिए बादशाह जहांगीर का प्रतिनिधित्व करते हुए ये लाल बेग उस अफगान राजा से युद्ध करने गए थे और उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे दूसरा वर्णन है। खैर जो भी हो, इतना निश्चित है कि लाल बेग की मृत्यु हो गई। उधर साल बेग एक नौजवान बन गए थे, अच्छे शूरवीर योद्धा भी बन गए थे, उस दूसरे वर्णन के अनुसार यह भी बताया जाता है कि जिस युद्ध में लालबेग की मृत्यु हुई उस युद्ध में सालबेग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। तो घायल तो हो गए और इतनी बुरी तरह से हुए कि प्राय मृत्यु की शैया पर थे, कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो भी वैद्य आदि थे वो भी ठीक नहीं कर पा रहे थे सालबेग को, और काफी कष्ट हो रहा था क्योंकि जब घाव ऐसे गहरा था तो सालबेग निराश हो गए और अपनी मां को बुलाया, कहा कि मैं अभी मरना चाहता हूं क्योंकि ऐसा दर्द मुझसे सहन नहीं होता है, ये घाव बहुत गहरा है। तो फिर ललिता देवी जो अभी फतिमा बीवी थी उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम निराश नहीं होना क्योंकि तुम्हारे लिए उपाय है, तुम अवश्य वृंदावन चंद्र का नाम लेना, जिनकी उपासना जिनकी सेवा देवता भी करते हैं इसलिए वृंदावन चंद्र को देवराज भी कहते हैं, और समस्त औषधियों के भंडार हैं वो, इसलिए तुम वृंदावन चंद्र की शरण लोगे तो ये तुम्हारी जो बीमारी है ये घाव आदि है ये सब ठीक हो जाएंगे। तो सालबेग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सालबेग ने कहा कि अरे ये तो कृष्ण है ना, ये तो हिंदुओं के भगवान है ना, तो ये हमारी बात कैसे सुनेंगे, हम तो मुसलमान हैं और वैसे भी आप भी एक श्रद्धालु मुसलमान महिला हो, तो आप मुझे कैसे कह रही है कि मुझे कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। फिर ललिता देवी ने सारी कथा बताई जो कि लाल सालबेग को पता नहीं था, क्योंकि बचपन से ही उनको कुछ पता नहीं, उन्होंने सोचा कि जैसे मुसलमान होती है भी मेरी माँ ऐसी मुसलमान है। लेकिन फिर ललिता देवी ने सारी बातें बताई, पूरा इतिहास कि कैसे उनका अपहरण किया गया और बलपूर्वक कैसे विवाह हुआ और क्या शर्त रखा था उन्होंने, और फिर ललिता देवी भाव विभोर होकर रोने लग गई और आगे नहीं बता पाई, लेकिन सालबेग सारी बातें समझ गए। फिर सालबेग ने अपने माँ को सांत्वना दी और कहा कि ये जो शरीर है मेरा ये आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ है, आपके गर्भ में था इसलिए ये शरीर आपकी संपत्ति है, इसलिए जो भी आप आदेश करोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो जब उस ये बातें सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गई उनकी माता ललिता देवी। ललिता देवी ने पहले कहा था श्री वृंदावन चंद्र भज, ये थोड़े उड़िया में है, हम उड़िया भाषा तो नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर भी उड़िया ग्रंथों में इस वार्तालाप का भी वर्णन है, शायद आप भी समझ जाएंगे। श्री वृंदावन चंद्र भज शेजे अशेष देवराज अशेष औषधीर घर भजिले निश्चय है उपार। उसने कहा कि देखो वृंदावन चंद्र का भजन करोगे जो कि देवराज है तो वो हमारे प्राण धन है, और समस्त औषधियां क्योंकि उनके पास है वही एकमात्र है जो तुमको ठीक कर सकेंगे, और तुमने जब वृंदावन चंद्र की बात की है कि वो कौन है कहाँ रहते हैं और मैं कैसे उनके पास जा सकता हूं, तो ठीक है मैं सुनाती हूं। फिर उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया, उन्होंने कहा कि वृंदावन चंद्र रहते हैं वृंदावन में, उनके पिता का नाम है नंद बाबा और उनकी माता का नाम है यशोदा रानी, और नंद महाराज वो वृंदावन नाम के गांव के ऊपर राज्य करते हैं जहां की अनेक गोपगण रहते हैं, गोपियां भी रहते हैं, लेकिन ये जो गोपीनाथ है वृंदावन चंद्र है ये केवल वृंदावन के निवासियों के स्वामी नहीं है, समस्त जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में उन सब के वो नाथ हैं, उनके स्वामी हैं, इसलिए इनका तुम भजन कर लेना। और दिखने में कैसे दिखते हैं, वैसे उनकी शरीर का रंग, उनके शरीर की कांति है वर्षा ऋतु के समय जो एक घना बादल होता है वैसे। और यद्यपि उनका शरीर सांवले रंग का है फिर भी बहुत चमकता है, बहुत तेजस्वी है, प्रकाशमान है। उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। उनके कपाल में एक पीले रंग का गोरोचन से बना हुआ तिलक है। कानों में मकर कुंडल है और उन्होंने एक पीतांबर धारण किया हुआ है। तीन जगह उनका शरीर बका हुआ है और उनके दोनों हाथों में एक मुरली है जो कि वो बजाते हैं, और इस तरह से मुरली बजा के वो सभी के हृदय को आकर्षित करते हैं और सभी प्राणी उनके शरण में जाते हैं। देवतागण उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो ऐसे गोपीनाथ, ऐसे वृंदावन चंद्र को भजो। फिर सालबेग ने पूछा, अच्छा तो परंतु हम तो यहां हैं उड़ीसा में और गोपीनाथ वृंदावन चंद्र तो रहते हैं वृंदावन में, इतनी दूर से हम बुलाएंगे वो सुनेंगे कैसे? तो फिर ललिता देवी ने एक कहावत कही, उड़िया भाषा की कहावत, एक सुभाषित वहां है जिसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण के गुण और स्वरूप इतना अद्भुत है कि जहां भी आप उनका स्मरण करोगे, उनका चिंतन मनन करोगे, वहां श्री कृष्ण उपस्थित होंगे। तो फिर इसको सुन के उनका हौसला बढ़ गया, बहुत प्रसन्न हुए वो। उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी बात बताई, तो चलो हम वृंदावन चंद्र को पुकारते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी मां से कहा कि हम अवश्य दोनों साथ में मिलकर वृंदावन चंद्र को का नाम उच्चारण करेंगे। और फिर उन्होंने तय किया कि 12 दिन लगातार हम ऐसे करेंगे और यदि मेरे घाव ठीक नहीं हुए उस समय तक भी तो मैं मेरे प्राण को त्याग दूंगा, हम दोनों हमारे प्राण को त्याग देंगे। तो दोनों तैयार हुए। तो 12 दिन लगातार बड़े ध्यान से, हृदय से, सालबेग भी और ललिता देवी भी, दोनों वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को पुकारते गए। लेकिन 12 दिन के बाद भी घाव ठीक हुआ नहीं। सालबेग निराश हो गए। सालबेग ने कहा कि ऐसे क्यों हुआ, भगवान हमारे साथ में नहीं आ रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ललिता देवी ने बताया, देखो निराश नहीं होना चाहिए, गोपीनाथ के बारे में मैंने तुम्हें जो भी बताया वो मैंने मेरे बचपन में मेरे पिताजी से सुनी थी। तो देखिए बचपन के संस्कार जो होते हैं युव अवस्था में, बचपन में जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं उनका कितना महत्व होता है। यदि बच्चों को हम ऐसे अच्छी तरह से भगवान की भक्ति के संस्कार दे दें तो आगे चल के उनके जीवन में कठिन समस्याएं आए भी तो ये संस्कार उनकी रक्षा करेंगे, उनको सही मार्ग पे रखेंगे, इधर उधर वो भटकेंगे नहीं। फिर तो ललिता देवी अभी प्राय बूढ़ी हो गई थी, फिर भी अभी बचपन के संस्कार गए नहीं थे, बहुत तीव्रता से उनके हृदय में थे, वो श्रद्धावान थी अभी। उन्होंने कहा, देखो मेरे पुत्र निराश नहीं होना चाहिए, भगवान की ये अद्भुत लीला है। भगवान अक्सर ऐसे किया करते हैं, अपने भक्तों के जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं, ये उनकी कृपा है, और ऐसे कष्ट के द्वारा वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होता है उसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो अपना धैर्य खो बैठता है फिर वो असफल हो जाता है, भगवान की कृपा उसे नहीं मिलती है। इसलिए तुम बिल्कुल निराश नहीं होना, तुम वृंदावन चंद्र के पवित्र नामों का उच्चारण करते रहना, उनकी शरणागति लिए बिना और दूसरा कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है। तो फिर बड़े उत्साह से सालबेग ने पुनः वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण के नामों का जप कीर्तन आदि करना शुरू किया, चिंतन मनन करना शुरू किया और अपने माँ के बताए हुए आदेश के अनुसार उनके सुंदर रूप का भी ध्यान करते रहे। और ऐसे बताया जाता है कि उस रात उनके सपने में श्री कृष्ण आए, वही गोपीनाथ आए और उनके पास में बैठे और उन्होंने थोड़ी विभूति दे दी सालबेग को और कहा कि ये विभूति अपने घाव पे लगाओ। तो सालबेग ने जैसे ही वो विभूति अपने घाव पे लगाई स्वप्न में, तो वो घाव ठीक हो गया और वो स्वप्न से जागे, बहुत उत्तेजित हुए, हर्षित हुए, जाके अपने माँ को जगाया और बताया कि देखो देखो ऐसे हुआ है। इस घटना के बारे में इतिहासकारों ने दूसरा भी एक वर्णन बताया है। ऐसा दूसरा वर्णन इस प्रकार से है कि उनके घर में उस समय बाल मधुसूदन नाम के एक साधु आए जो भी कृष्ण भक्त थे। 21 दिन लगातार वो सालबेग के पास में बैठकर हरि नाम ले रहे थे और फिर उन्होंने उनको विभूति दी, वो विभूति लगाई, वो घाव ठीक हो गया। खैर जो भी हो, बात तो ये है कि उनका घाव ठीक हो गया और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। उस समय जब सालबेग निराश हो गए थे तो ललिता देवी ने बहुत तीव्रता से, हृदय से गोपीनाथ जी से प्रार्थना की थी कि हे गोपीनाथ, हम आपके शरण में हैं, आप अंतर्यामी हैं, कोई चीज आपके लिए अज्ञात नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, आपने इतने भक्तों के लिए जीवन में चमत्कार किए हैं, उनको कष्टों से मुक्त किया है, तो कृपया हम दोनों को भी आपके शरण में रखिए, हमें भूलिए मत। तो गोपीनाथ जी जो हैं वो अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। तो ये श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब हम तीव्रता से प्रार्थना करेंगे भगवान सुनते हैं अवश्य, लेकिन जितने तीव्रता से हम पुकारेंगे, जितने हृदय से पुकारेंगे, उतनी ज्यादा जल्दी भगवान हमारे पास आएंगे। हम श्रद्धा से नहीं बुलाएंगे तो भगवान आएंगे नहीं, या आएंगे भी तो देर से आएंगे। तो इसलिए पुकारते समय हमें श्रद्धा होनी चाहिए और यदि भगवान आए नहीं तुरंत तो धैर्य रखना चाहिए, ललिता देवी की बातों को याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इस संदर्भ में पहले भी एक हम छोटी सी कहानी बता चुके हैं, फिर भी अब दोहराएंगे इस बात को कि एक बार एक बच्चा था, वो अचानक अपने पलंग से नीचे गिर गया जमीन पे, धाड़ करके आवाज आ गई, बच्चे को थोड़ी बहुत चोट भी पहुंची। तो माँ ने आवाज सुन ली, दौड़ के चली आई, बच्चे को उठाया, बच्चे को जो रो रहा था उसको बहुत सांत्वना दी और फिर उसको एक मिठाई भी दे दी। तो बच्चे ने मिठाई ले ली और बहुत खुश हो गया, मिठाई का आनंद तो ले लिया। बाद में बच्चे ने अपनी बुद्धि, बच्चे की बुद्धि चलने लगी, बच्चा सोचने लगा कि ये तो अच्छी बात है, मुझे मिठाई मिली, मैं रोने लग गया तो मुझे माँ ने मिठाई दी, तो अब क्या करना चाहिए, मुझे तो मिठाई चाहिए तो फिर से रोना चाहिए। तो फिर से जोर से रोना शुरू कर दिया बच्चे ने। तो इस बार माँ रसोई घर में थी, नहीं आई, और जोर से रोना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं आई। जब बिल्कुल हल्ला गुल्ला कर दिया, शोर मचा दिया, तब आराम से माँ फिर आई, क्यों रो रहे हो? फिर बच्चे ने कहा, मैं क्यों रो रहा हूँ बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि पहले जब मैं रोया था, एक बार रोने से तुरंत तुम जल्दी से आ गई, और अब मैं इतना रो रहा हूं फिर भी तुम क्यों नहीं आई, इतनी देर से क्यों आई? तो माँ ने कहा, देखो पहले जब तुम रो रहे थे तो मेरे लिए रो रहे थे, अब रो रहे थे तो मिठाई के लिए रो रहे थे, जब मेरे लिए रो रहे थे तो मैं तुरंत आई। तो उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण के लिए रो रहे हैं तो कृष्ण तुरंत आएंगे। भगवान कृष्ण हैं भावग्राही जनार्दन, हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। यदि हमारा भाव उतना ही शुद्ध, उतना ही आतुर, उतना ही तीव्र और शुद्ध रहा, और ऐसे निस्सहाय भाव से यदि हम भगवान को पुकारेंगे तो अवश्य भगवान आएंगे। साल बेग के साथ भी ऐसे हुआ, तो भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो इतने प्रभावित हो गए साल बेग कि साल बेग ने तय कर लिया कि मैं अभी, मुझे अब दूसरा जीवन मिला है, मेरी वैसे तो मृत्यु निश्चित थी, अब मुझे दूसरा जीवन मिला है और ये जीवन मैं केवल गोपीनाथ के लिए समर्पित करूंगा। मैं अब जगन्नाथपुरी जाऊंगा और जगन्नाथ का शरण लूंगा। तो अपने मां से आशीर्वाद प्राप्त किया और वो जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। और वहां जब गए तो थोड़े निराश हो गए। क्यों निराश हुए? अंदर जाने नहीं दिया। क्यों अंदर जाने नहीं दिया? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाले लोगों को प्रवेश मना है। तो वहां न केवल उनको प्रवेश नहीं मिला, वहां के मंदिर के पंडों ने और बाहर रहने वाले भी जो ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, वहां के अधिकारी व्यक्ति हैं, सब ने उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया, उनको अपमानित किया, उनका तिरस्कार किया। तो ऐसे उनका हृदय दुखी तो हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैं तो चकरडोला का दर्शन, चकरडोला उड़िया भाषा में उनको चकरडोला पे, जिनके बड़ी बड़ी आंखें हैं, डोला आप जानते हैं, यहां भी डोले बोलते हैं मराठी में ना, चकरडोल जो उनको बहुत बड़े बड़े आंखें हैं, जगन्नाथ जी की आंखें देखिए बड़े बड़े हैं ना, इसलिए ओडिया में उनको चकरडोला भी बोलते हैं। वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। जैसे हम कल बता रहे थे, जगन्नाथपुरी में ऐसे कहते हैं कि पतित पावन जगन्नाथ जी की मूर्ति ये सालबेग के लिए प्रकट हुई, कोई कहते हैं रामचंद्र देव के लिए प्रकट हुई, ऐसे अलग अलग मत हैं। लेकिन खैर, अब सालभेग के लिए और कोई उपाय नहीं रहा, उनका आश्रय केवल पतित पावन जगन्नाथ थे। तो थोड़े समय के लिए वहां तो रहे, बाहर रह के वो जगन्नाथ जी का गुणगान तो करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी वृंदावन थोड़े समय के लिए जाना चाहता हूं और वहां मैं दर्शन करके फिर यहां लौट के आऊंगा। तो जाने के पहले उन्होंने अनुमति ली जगन्नाथ भगवान से, सुभद्रा देवी और बलराम जी से। कोहे साला बेगहीर जाति रो जवन, तीन दारू आज्ञा है लो जीवी वृंदावन। कोहे साला बेग, साला बेग कहते हैं हीन जाति रो यवन। ये साल बेग कौन है? हीन जाति वाला एक यवन है, ऐसे सालबेग कविता लिख रहे हैं। सालबेग की प्रत्येक कविता में ये एक पंक्ति अवश्य आएगी, हीन जाति र यवन, कि सालबेग हीन जाति का एक यवन है। अपने आप को तुच्छ मानना, ये शुद्ध भक्तों की एक पहचान होती है, लक्षण होते हैं। जितने भी शुद्ध भक्तों को आप देखेंगे, ये एक लक्षण उन सब में दिखाई देगा। अति नम्र होते हैं, घमंड बिल्कुल नहीं होता है, और अपने आप को बड़ा दीनहीन समझते हैं। और विशेष करके वो लोग जिनका जन्म एक तथाकथित नीच कुल में हुआ होगा, ऐसे लोग जैसे रूप गोस्वामी भी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर भी इसी भावना के थे। तो सालबेग भी ऐसे कहते हैं तीनी दारू आज्ञा है लो जीबी वृंदावन। तीनी दारू, ये दारू ब्रह्म कहते हैं ना इनको, वृक्ष से बनाए गए हैं इसलिए दारू ब्रह्म, क्योंकि वो भगवान है, परम सत्य है। तीनी ब्रह्म दारू, तीनी दारू आज्ञा है लो जीबी वृंदावन, कि उनकी आज्ञा, आपकी आज्ञा मिलने से ही मैं वृंदावन जाऊंगा। तो उनकी आज्ञा ले ली और फिर वो आगे चले गए। चलते चलते वो बालेश्वर में आए। बालेश्वर का नाम आपने सुना है, किसके लिए प्रसिद्ध है? खीर चोरा गोपीनाथ। बालेश्वर के पास में रेमुना है और रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध मूर्ति है भगवान की, माधवेंद्रपुरी से संबंधित। वैसे उनके पहले से ये गोपीनाथ जी की मूर्ति रही है वहां। तो फिर वहां पे वो आए बालेश्वर में, रेमुना में नहीं, बालेश्वर में। तो बालेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर है श्याम सुंदर भगवान का, भगवान कृष्ण का। तो बहुत उत्कंठा थी सालबेग के मन में कि मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूं, परंतु वहां भी पुजारियों ने उनको अंदर जाने, प्रवेश करने मना कर दिया, अनुमति नहीं दी। तो बहुत निराश हो गए, बाहर बैठे रहे। उस रात को वहां के उस प्रांत के राजा के मन में स्वप्न आया, स्वयं श्याम सुंदर भगवान थे, और उन्होंने कहा राजा से कि मेरा एक भक्त है सालबेग, और वो मंदिर के बाहर बैठा है, मंदिर दर्शन नहीं ले पा रहा है, तो इसके बारे में मैं प्रसन्न नहीं हूं। तो राजा जागे, चमत्कार हुआ, अरे। तो फिर सीधे गए और उन्होंने फिर आदेश दिया कि उस मंदिर में एक उस दीवार में छेद किया जाए, ताकि छेद के बाहर, छेद में से बाहर खड़े होकर भी सालबेग श्याम सुंदर का दर्शन कर सके। इसके पहले चमत्कार हुआ ये था कि जब सालबेग को अनुमति नहीं मिली थी अंदर जाने के लिए, उस रात को जब भगवान को शयन देते समय पुजारी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति श्याम सुंदर की है ही नहीं, गायब हो गई। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जब वहां पे सालबेग दर्शन लेने के लिए आए अगले दिन सुबह, उस दीवार के भीतर जो छेद था उसमें से, तो अचानक वहां श्याम सुंदर की मूर्ति प्रकट हो गई। तो ये सब चमत्कार हुए सालबेग के लिए। तो फिर सालबेग आगे चलते गए और बालेश्वर से वृंदावन जाते जाते उन्होंने गीत लिखे। वैसे हजारों गीत लिखे हैं सालबेग ने, उड़िया भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, बंगला में, ब्रज बोली में, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। बहुत भावपूर्ण होते हैं उनकी कविताएं, और विशेष करके विरह की भावना बहुत प्रधान है उनके कविताओं में। और ये उपयुक्त है क्योंकि वो रह रहे थे विरह क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ भगवान भी तो विरह के रूप है ना भगवान के। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं और वृंदावन की उनको बहुत याद आती है, वृंदावन के भक्तों से और विशेष करके गोपियों से वह विरह की भावना होती है, तो वो जगन्नाथ का रूप धारण करते हैं। तो ये है जगन्नाथ के रूप का रहस्य। तो वो विरह रूप है, इसलिए जगन्नाथपुरी ये भी विरह क्षेत्र है। तो इसी भाव को स्वीकार किया सालबेग ने, तो उनके कविताओं में भी ऐसे ही एक भाव, बहुत भावपूर्ण भक्तिमय उनकी कविताएं हैं। तो बालेश्वर से जब वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने गीत गाया, उड़िया में है फिर भी, जीवन रे ठीबी जेबे जीबी वृंदावन, दर्शन कोरी भी जाए श्री मधुसूदन। मैं अभी केवल एक वजह से जी रहा हूं, जीवन रे ठीबी जेबे जीबी वृंदावन, कि मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन जाके दर्शन कोरी भी जाए श्री मधुसूदन। तो श्री मधुसूदन का दर्शन करना ही बस मेरे जीवन का एक ध्येय है, इसलिए मैं अभी बस जी रहा हूं। राधा कुंड श्याम कुंड कोर भी स्नाहन, परिक्रमा कुरुथी भी गिरी गोवर्धन। आप समझ गए, मैं जाके राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करूंगा और वहां जाके गिरी गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। आनंदे जमुन जल कर भी मुनि पान मुनि की भज भी जेहु मुकति भजन। आनंद में जाके यमुना जी के जल का मैं पान करूंगा और साथ साथ में मैं मुई निकी भजी भी जेहु मुकुति भजन। जो मुक्ति प्रदाता है श्री कृष्ण, उनके पवित्र नामों का भजन कीर्तन मैं करता रहूंगा। राहसर धूलिया गे अंगे कोरी भी लेपन कुंजे कुंजे तरुमूले कोरी भी शयन। रासलीला के स्थली में जो धूली है वो मेरे शरीर पे उसका मैं लेप लगाऊंगा और हरे कुंज में वहां जो कल्प वृक्ष हैं उनके तल में मैं शयन करूंगा। राधा कृष्ण वेणी भिन्न नहे कुंज वन कोहे साला बेगहीन जाति र यवन। फिर ये हीन जाति का यवन साल बेग प्रार्थना करता है कि कब उसे राधा कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति होगी। ऐसे करके वो आगे वृंदावन चले गए। वृंदावन में थोड़े समय के लिए रहे, खूब वहां दर्शन आदि किया, वहां निरंतर भजन किया श्री कृष्ण का। और फिर अचानक उनके मन में, एक साल के करीब वहां रहे वो, फिर उनके मन में अचानक इच्छा हुई कि मुझे रथ यात्रा में जाके जगन्नाथ का दर्शन करना है। ये इच्छा उनके मन में बहुत तीव्रता से आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी समय तो बहुत लगेगा, क्योंकि उस जमाने में ना कोई हवाई जहाज थी, ना कोई रेलगाड़ी थी, ना उनके पास कोई हाथी घोड़ा था, ना रथ था, ना कुछ। यदि उनको वृंदावन से जगन्नाथ पुरी जाना था तो पैदल जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, और पैदल जाते जाते एक महीना पूरा लग जाता, शायद वो रथ यात्रा तक पहुंच नहीं पाते। तो फिर वो निकल पड़े वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर। और उस समय उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध भजन गाया, जग बंधु हे गोसाई तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही। हे जग बंधु, हे सारे जगत के बंधु, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, आपके चरण कमलों के आश्रय के बिना मेरी और कोई गति नहीं है। अब ये जगबंधु हे गोसाई, ये सारे उड़ीसा में प्रसिद्ध से प्रसिद्ध गीतों में से एक है। जयदेव गोस्वामी के गीतों के बाद ये सबसे प्रसिद्ध गीत है। अभी आते आने के पहले हमने सोचा कि कोई उड़िया भक्त से हम सुन लें कि ये कैसे गाया जाता है, लेकिन उनको पूरा कंठस्थ तो नहीं था, उन्होंने सुनाने का प्रयास किया लेकिन फिर यहां आने का समय हो गया। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि ये भजन उड़ीसा में सभी लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी से भी पूछिए जगबंधु है गोसाई, वो आपको गा के सुनाएगा। यहां कोई उड़िया है? कोई उड़ीसा से है कोई यहां पे भक्त? नहीं है ना। तो कहते ये तो बच्चा बच्चा जानता है। वो कहने लगे कि ये बहुत प्रसिद्ध है ये भजन, और जयदेव गोस्वामी के बाद में भक्त कवि सालबेग का नाम आता है, इतने प्रसिद्ध है वो, इतने सारे गीत उन्होंने लिखे। और इस गीत की विशेषता ये है कि इसमें सालबेग ने जगन्नाथ जी का गुणगान तो किया है और कहा कि मैं आपका दर्शन करने के लिए बहुत आतुर हूं, और उनके नंदी घोष रथ, उनके रथ का नाम है नंदी घोष जगन्नाथ के, जरा आप नंदी घोष पर ही रहिए, नंदी घोष से उतरिए मत जब तक कि मैं न आऊं जगन्नाथपुरी। मैं आके फिर आपका दर्शन करना चाहता हूं, फिर आपके महाप्रसाद का सेवन करना चाहता हूं। और ऐसे उन्होंने अपने हृदय की कामनाओं को व्यक्त किया कि जिस तरह से वो सेवा करना चाहते थे आगे जगन्नाथपुरी में। पहले बलदेव जी का, बलभद्र का रथ चलेगा, उसके पीछे सुभद्रा देवी आएंगी, फिर आपका नंदी घोष उसके पीछे पीछे आएगा, लेकिन आप रुक जाइए वहां नंदी घोष में ही, मैं आके दर्शन करना चाहता हूं आपका। तो चमत्कार हुआ उस समय, रथ यात्रा तो हो चुका, रथ यात्रा के समय तक पहुंच नहीं पाए। रथ यात्रा होती है जब जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर से वो जाते हैं गुंडीचा मंदिर, 9 दिन के बाद उल्टा रथ होता है। तो उल्टा रथ के समय वो थोड़े दूर पर थे पुरी से, और उस समय नंदी घोष रथ रुक गया, और जितने भी लोग आके कीर्तन करें, भजन करें, प्रार्थना करें कि चलिए जगन्नाथ आप चलिए, अभी समय हो गया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी आपको चलना है वापस आपके मंदिर में, लेकिन जगन्नाथ हिले नहीं वहां से। और ये तो सर्वविदित बात है जगन्नाथ के भक्तों के लिए कि जगन्नाथ जी का रथ हिलता है तो केवल जगन्नाथ की इच्छा से, लोगों के खींचने से नहीं, शारीरिक बल से रथ हिलता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जब जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी रथ यात्रा के समय, ऐसे भी कई बार हुआ करता था, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य और कीर्तन करते तो जगन्नाथ जी बड़ी प्रसन्नता से आगे चलते, जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते रथ के पीछे आते तो जगन्नाथ जी रुक जाते, जब तक कि महाप्रभु सामने नहीं आते जगन्नाथ आगे चलते नहीं। ऐसे जगन्नाथ भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु में दिव्य स्पर्धा होती। एक बार राजा ने, प्रताप रुद्र ने हाथी घोड़ों को भी बुलाया क्योंकि रथ हिल नहीं रहा था। पहले तो भक्तों ने प्रयास किया खींचना, फिर बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया खींचने के लिए, फिर भी रथ हिला नहीं, फिर हाथियों को बुलाया गया, फिर भी रथ हिला नहीं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु पीछे गए रथ के, अपने कपाल से उन्होंने स्पर्श किया रथ का, तो बड़े आसानी से रथ आगे चला। तो ऐसे जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, ये सर्वविदित बात है। तो इस सालबे की घटना तो इससे पहले हुई थी, तो नहीं बाद में हुई, 1600 कुछ उनका जन्म हुआ था, सन 1600 में राधाष्टमी के दिन में सालबेग का जन्म हुआ था, तो महाप्रभु के बाद में बाद की घटना है ये। तो वहां अनेक दिन रुके रहे, और अंततः जब वहां सालबेग पहुंचे तो सीधे आए और उन्होंने दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया और अपने जी भर से दर्शन किया, और सभी को उस समय पता चल गया कि जगन्नाथ जी रुके थे केवल सालबेग को दर्शन देने के लिए, और फिर नंदी घोष रथ अपने आप आगे चलने लगा। तब दावानल की तरह खबर फैल गई कि जगन्नाथ रुके थे केवल अपने एक यवन भक्त के लिए, यवन मतलब जो मुसलमान परिवार से है उनको यवन कहते हैं, जो नीच जाति में जन्म लिया हुआ भक्त है, जो वृंदावन से आया है, उसके लिए खास जगन्नाथ जी इतने दिन रुके हैं रथ के ऊपर उसको दर्शन देने के लिए, क्योंकि उनको जगन्नाथ मंदिर में जाना तो मना था। तो सभी लोग वहां पर आए, सैकड़ों लोग वहां पर जल्दी जल्दी से आए उस भक्त का दर्शन करने के लिए कि कौन है ये भक्त सालबेग जिनके लिए स्वयं जगन्नाथ जी यहां रुके। उस समय सालबेग को अच्छा नहीं लगा कि अरे रे, पछतावा बहुत हुआ कि किस तरह की प्रार्थना मैंने की भगवान से, ऐसे उचित नहीं था मेरे लिए भगवान को प्रार्थना करना दूर से ही कि आप नंदी घोष पर ही रहना, और मेरी क्या योग्यता कि मैं ऐसे भगवान को रोक के रखूं, और भगवान इतने कृपालु हैं कि वो रुक गए। फिर से उसी समय उन्होंने इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक गीत गा दिया। तो ऐसे हुआ करते थे वो, जब भी जैसे भाव मन में आए तुरंत उसी समय पर वो एक गीत गा दिया करते थे। तो ऐसे हजारों गीत उन्होंने गाए हैं, तो ये गीत भी काफी प्रसिद्ध है उड़ीसा में, जबकि वो कृपा याचना करते हैं क्षमा याचना करते हैं कि इस तरह से आपको रोके रखना मेरे लिए ठीक नहीं था, फिर भी आप कितने कृपालु हैं। हम जैसे यवन हीन भक्त के लिए, व्यक्ति के लिए भी आप रुके। तो फिर जगन्नाथ जी आगे चले गए और जो लोग सालबे को देखने के लिए आए थे, जब ये खबर सबको मिली, उनमें से वो राजा भी थे, उस समय गजपति राजा थे नरसिंह देव, वो भी बहुत प्रभावित हुए सालबेग से। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि सालबेग के लिए यह स्थान रहेगा। सालबेग उस स्थान में, बलगंडी नाम है उस स्थान का, तो सालबेग उसी स्थान में रहे जहां पे जगन्नाथ जी रुके थे उनके लिए, और आजीवन वहीं रहे, वहां से कभी नहीं गए फिर, और उनकी समाधि भी वहां पे है। तो समाधि के लिए जमीन जो थी और खर्चा, वो राजा नरसिंह देव ने कराया। और इतना ही नहीं, उन्होंने और थोड़ी भी जमीन दान में दे दी ताकि उससे जो उत्पादन आदि हो, यहां समाधि में जो भी खर्चा हो वो निकल जाए। और उन्होंने यह भी आदेश दिया कि आज से जो भी महाप्रसाद जगन्नाथ जी के मंदिर में आता है, एक विशेष प्रकार का मीठा महाप्रसाद होता है, उन्होंने कहा कि रोज ये महाप्रसाद जगन्नाथ जी का समाधि में, सालबेग के समाधि में अर्पण होना चाहिए। और ये आज तक की प्रथा चल रही है। तो सालबेग वहीं पे रहे जगन्नाथपुरी में, वहां से फिर हटे नहीं, और अपनी कविताएं ऐसे लिखते गए, भक्ति के गीत ऐसे गाते गए अनेक भाषाओं में। और यद्यपि वो मंदिर के अंदर नहीं गए, फिर भी उन्होंने रथ यात्रा में तो भगवान का दर्शन किया, लेकिन बहुत सम्मानित भक्त हैं, सारी उड़ीसा में लोग सालबेग का नाम जानते हैं। तो देखिए भगवान जगन्नाथ कितने कृपालु हैं। जगन्नाथ भगवान कोई भेद नहीं करते हैं, मनुष्य भेद करते हैं। भगवान के लिए तो सभी एक समान है, कौन किस धर्म का है इससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। भगवान देखते हैं कि हमारे हृदय की भाव क्या है, भावग्राही जनार्दन। भाव भक्ति की हुई तो चाहे हमारा जन्म कहीं भी क्यों ना हुआ हो, वो हमें स्वीकार करते हैं। यदि हमारा भाव सही नहीं है, तो यदि हमारा जन्म किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में भी क्यों ना हुआ हो, वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि भगवान की लीलाओं में, भगवान के विभिन्न अवतारों में भी ऐसे अनेक भक्त मिलते हैं जो कि उच्च कोटि के नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के और उनके अनुयायियों के भी इतने सारे भक्त हुए। हरिदास ठाकुर एक ही उदाहरण है उनमें से, और कई हैं। श्री रामचंद्र के भी कितने ऐसे भक्त रहे जो कि मनुष्य भी नहीं थे, जैसे जटायु हैं और सारी वानर सेना है, जांबवान हैं, और ऐसे कितने उदाहरण हैं। श्री कृष्ण के भी ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो ब्राह्मण नहीं थे या उच्च कोटि के कुल के नहीं थे, सबको उन्होंने स्वीकार कर दिया। उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ के भी ऐसे अनेक भक्त हुए हैं, और उनमें से तथा कथित नीच कुल में जन्म लेने वाले भक्तों की श्रृंखला में इनका नंबर पहला है, सालबेग का भक्त कवि सालबेग। क्योंकि कविताएं ऐसे, गीत ऐसे लिखा करते थे, तो उनका नाम कवि सालबेग हो गया, और क्योंकि इतने बड़े भक्त थे इसलिए भक्त भी नाम आ गया, तो भक्त कवि सालबेग। तो जब यवन परिवार में जन्म लिए हुए लोग भी ऐसे जगन्नाथ जी की शुद्ध भक्ति करते हैं और कर सकते हैं, तो हमें और कितनी तीव्रता से उनके शरण में जाना चाहिए। वैसे और कई भक्त हैं ऐसे तथाकथित निम्न कुल में जन्म लेने वाले, परंतु अब समय नहीं है, और कभी समय मिले तो उन भक्तों की चर्चा हम करेंगे। यहां तक कि औरंगजेब के बारे में भी बात करेंगे कभी और, कैसे औरंगजेब जैसे जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति था उसके ऊपर भी जगन्नाथ भगवान ने कैसे कृपा की। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।